نحمد و نصلي على رسوله الكريم اما بعد قال الله تعالى في القران المجيد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد مادن الجود والكرم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلي البر البر اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلي وصحابي ووالي وسلم أما جس انسان کو اپنی منزل کا پتہ نہ ہو چاہے کتنا ہی بڑا سفر کرتا رہے کتنی سال سفر کرتا رہے اور اس کے نزدیک یا اس کے سامنے کوئی منزل تعین نہ ہو منزل کو مقرر نہ ہو تو کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا وہ شخص منزل ہے ہی نہیں اس کے لیے ہم سب مسافر ہیں اور ہم سب آخرت کے مسافر ہیں تو جب ہم مسافر ہیں تو پہلا کوشچن یہ ہے کہ ہماری منزل کیا ہے مقصود کیا ہے ہمارا جس کو یہ پتہ نہ ہو تو چاہے کتنا کچھ کرتا رہے منزل پہ کیسے پہنچے گا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے منزل قرآن حکیم میں ارشاد فرمایا کئی جگہ فرمایا خلق الجن والانس الا ليعبدون یا تو ہم جن ہیں یا انسان ہیں اب دیکھ لیں اب کیا ہیں جن بھی ہوں گے ماشاء اللہ ہمیں کیا پتہ انسان کی شکل میں جن آ جاتے ہیں پتہ نہیں ہوتا کون جن ہے کون نہیں کوئی نشان جن انسان فرق یہ ہے کہ وہ بھیس بدل سکتا ہے اللہ نے اس کو طاقت دی ہے لطیف جن سے کبھی انسان بن جاتا ہے کبھی جانور بن جاتا ہے کبھی سانپ بن جاتا ہے کبھی کچھ بن جاتا ہے کبھی انسان کی شکل میں بیٹھا ہوتا ہے آپ کا دوست بن جاتا ہے آپ کے ساتھ کھانا بھی کھاتا ہے اور سب کچھ آپ کو پتہ ہی نہیں تو یہ تو جن ہے آپ کے ساتھ بیٹھ کے ذکر کر رہے ہوتے ہیں آپ کو سمجھ نہیں آتا جن ہے تو فرق یہی ہے کہ دونوں یہ مخلوق اللہ تعالیٰ کی ایسی ہیں مکلف فرمایا جس کو اللہ تعالیٰ نے تیسری فرشتے ہیں اس کو تو اللہ تعالیٰ نے اپنے کنٹرول میں رکھا ہے بس اس سے زیادہ انہوں کر ہی نہیں سکتا جو اللہ ان کو دے دیا لیکن یہ جو مخلوق ہے جن اور انسان تو ان کے لیے اللہ نے مکلف بنایا ہے تو بھیا تو ہم جن ہیں انسان کچھ بھی ہیں لیکن اگر ہم مسافر ہیں تو منزل تو پتہ ہونا چاہیے کیا منزل ہے ہماری اللہ کہتا ہے خلق الجن والانس ليعبدون منزل ہی کی ہماری یاد رکھے نہ روزہ ہے نہ حج ہے نہ زکوٰۃ ہے نہ کچھ بھی نہیں یہ منزل نہیں ہے یہ سباب ہیں یہ ذرائع ہیں اس چیز کو حاصل کرنے کے لیے مقصد نہیں ہے بعض اوقات انسان ہوتا ہے کہ ذرائع میں گم ہو جاتا ہے منزل کو بھول جاتا ہے کبھی ایسے ہی ہو جاتا ہے انسان کے ساتھ کہ ذرائع میں گم ہو گیا اس کو منزل پتہ نہیں ہے نماز کیوں پڑھ رہا ہوں ڈزنٹ نو اباؤٹ اٹ بتا دوں گا آپ کو کیوں اگر نماز آپ پڑھ رہے ہیں اگر آپ کو نماز پڑھ رہے ہیں اور منزل کے لیے پڑھ رہے ہیں تو سب سے پہلی دعا نظر نماز ختم ہونے کے بعد آپ کیا مانگیں گے وہی مانگیں گے جو آپ کی منزل ہے کیونکہ نماز کے لیے پڑھ رہے ہیں تو مجھے بھائی ذرا ہاتھ کھڑا کر کے بتائیں کتنے لوگ یہ پہلی دعا مانگتے ہیں یا اللہ میرا کاروبار دے دے یا اللہ میرا بچہ صحیح کر دے یا اللہ میری شادی کر دے یا اللہ مجھے اولاد دے دے یا یہ منزل تو ہے ہی نہیں ہے یا ایسا نہیں تو اس میں ہم بھولے ہیں منزل کو تو یہ جو مجمع لگتے ہیں نا یہ چیزیں ذکر کی مجلس ہوتی ہیں وہ یہ منزلوں کو یاد کراتے ہیں تو اس میں تو آیا کرو بھائی بولے سبحان اللہ ये रिमाइंड कराते हैं, रिमाइंडर है, इससे ही भागते हैं आप। बल्कि वो याद करा दो फिर नाराज हो जाते हैं, ये क्या बातें करता है, पता नहीं आदमी अजीब आदमी है, बातें नहीं हमें समझ आती। समझने की कोशिश करें, समझ आ जाएगी
इंशाल्लाह।
तो पहली चीज, अगर हम मंजिल के मतलाशी हैं तो जहर से पहले दुआ हमारी, तो इसमें से हम जराए में गुम हो गए, मंजिलों को भूल गए। रोजा रख रहे हैं, रोजा क्यों रख रहे हैं? मंजिल को हासिल करने नहीं, रोजे के बाद स्वभाव देख रहे हैं, वो चीज देख रहे हैं, इधर देख रहे हैं, हजारों किस्से कहानी है, हज कर रहे हैं, हजारों किस्से कहानी है, कोई अपनी मंजिल को नहीं देख रहा। हमारा तो ऐसा होना चाहिए, इतना मुस्तैद होना चाहिए, जो मस्जिद जैसे आप जा रहे हैं ना सड़क पर, आप रास्ता पूछे, हर आने जाने से पूछे, भाई ये बताना मकान फलां जगह किधर है, जरा हम उनसे मिलने, कई दो आपको इतफाक हुआ होगा, एकदम गाड़ी रुकती है, पहचान सलाम वालेकुम जी, वो फला मकान का नंबर आपको पता है? नहीं मुझे तो पता नहीं। हाँ जी इधर से मुड़े, इधर से मुड़े, वो फिर मुड़ना शुरू होता है बेचारा, कुछ नहीं देखता, क्योंकि वो हकीकत में तलाश कर रहा है मंजिल को, वो आदमी से पूछता है, वो फिक्रमंद है, वो जरूरतमंद है। नहीं तो हम तो अल्लाह से भी नहीं पूछते, अल्लाह ताला हमने नमाज पढ़ी है, मैं मंजिल दे दे अपनी। तो एक चीज नुकता, ये नुकते की बात बता रहा हूँ, तंजे नहीं हो रहा, कि आइंदा जब भी कोई जराए इस्तेमाल करें, सबसे पहली दुआ किस चीज की मांगेंगे? अपनी मंजिल की। मंजिल क्या है? खलक अल्जन्नत वस्सलावात। मंजिल हर मोमिन की एक ही मंजिल है, वो क्या है? अल्लाह की रजा मकसूद है। रजा समझते हैं? राजी करना अपने मौला को, उसकी तलब करना, इश्तियाक रखना, इसको कहते हैं रजा। तो नमाज पढ़ी, सबसे पहले क्या है? दुआ मांगनी, गिड़गिड़ा के, अल्लाह नमाज तो पढ़ ली, इसको कबूल करके बस इसलिए पढ़ी तू राजी हो जाए, और मुझे कोई मकसद नहीं नमाज का, बाकी जो चीजें हैं हाजात, जो अल्लाह राजी हो गया तो वो तो सब कुछ जानता है, उसके पीछे क्यों मांगते तुम फला दे दे फला दे दे। असल चीज की तरह कि अल्लाह तू राजी हो गया तो सब काम खुल गया, मामले में रसीदा हो गया सब। असल चीज हमारी तलब क्या होनी चाहिए? अल्लाह की रजा। ये रजा हमारी क्या है? मंजिल है। यहां एक नुकता और समझा दूंगा, इम्तहान है ना हमारा, हमने रजा को हासिल करना है। अभी समझे, हमने रजा को हासिल करना है, जिसने अल्लाह की रजा को हासिल कर लिया वो पास हो गया आखिरी दुनिया में, पास हो गया, और जिसने अल्लाह की रजा को हासिल नहीं किया वो फेल हो गया। तो पास फेल किसके साथ होते हैं? इम्तहान के साथ होते हैं। तो हर इम्तहान का एक कायदा है, याद रखिए। इम्तहान की तारीफ क्या है? इम्तहान क्या चीज बनती है? इम्तहान वो चीज बनती है कि जिस चीज को पाने के लिए, कामयाबी को पाने के लिए उसमें रुकावटें हों, जो बंदा उन रुकावटों को दूर करते हुए अपनी मंजिल को पा जाएगा वो कामयाब हो गया। थोड़ा और समझा दो कि जिस चीज में रुकावट ही ना हो, इम्तहान ही नहीं है। मिसाल के तौर पर हमने कोई इम्तहान पास करना है, तो इम्तहान वो उस वक्त बनेगा जब हम उन रुकावटों को खत्म करने के बाद उसको हासिल करेंगे। अगर किताबें आपके सामने खोल दी जाए, पेपर आपके सामने रख दिया जाए, सारे सवाल हल आपके सामने रख दिया जाए, वो इम्तहान हुआ? तो इम्तहान ही नहीं है, क्योंकि वो तो वैसे ही पास, सब सामने ही आपके हिसाब की किताब है। तो मेरे भाई, ये दुनिया हमारे लिए इम्तहान है। एक बड़ा नुकता समझ जाए आप सर, जब ये इम्तहान है तो इस इम्तहान को पास करने के लिए अल्लाह ने खोल के तो नहीं रखी सारी चीजें वास्ते, नहीं, जब इस इम्तहान को पास करना है तो अल्लाह ताला ने इस इम्तहान को पास करने की कुछ रुकावटें रखी हैं इस दुनिया की। इस रुकावटों को जो इंसान अबूर कर लेगा, पार कर लेगा, वो इस इम्तहान में पास हो गया और कामयाब हो गया, मंजिल पे पहुंच गया। मंजिल पे जब ही पहुंचते आते, तो वो जो रुकावटें हैं इस दुनिया के अंदर, हकीकत में अल्लाह की हकमत के कायम है, और वो इसलिए कायम है कि हम उन रुकावटों को तोड़ें, उन रुकावटों को फलांगते हुए, तोड़ते हुए, उनसे हटाते हुए हम अल्लाह तक पहुंच जाए। क्या रुकावटें हैं? दुनिया की सारी रुकावटें हैं जो अल्लाह से रोकती हैं हमें। क्या है? माल की मोहब्बत है, बीवी की मोहब्बत है, बच्ची की मोहब्बत है, दुकान की मोहब्बत है, बीमारी हैं, परेशानी हैं, और ये शैतानी ख्याल आते हैं, शहवात हैं, औरत हैं, ये सब क्या चीज़ें हैं? ये अल्लाह की मस्जिद से रुकावटें थी हमें, ये कोई सजा नहीं थी, क्योंकि अल्लाह कहता है जब इन रुकावटों को तुम ख़त्म करके आओगे तभी तो पता चलेगा कि तुम इम्तहान में पास हुए हो। जब तुम्हारे सामने रुकावट ही कुछ नहीं होगी तो फिर इम्तहान कहाँ हुआ? वो फिर तो सीधे जन्नत में आ जाए, भाई पास हो गए तुम, हो ही कुछ नहीं तुम्हारे लिए कुछ। लेकिन अल्लाह कहता है मैं तुम्हें इम्तहान के लिए पैदा किया है, बोला नबल वन न कूंगी शय, अल्लाह कहता हर चीज़ जो है इम्तहान के साथ, इम्तहान में मुख्तलिफ रुकावटें होंगी तुम्हारी जिंदगी के अंदर, उन रुकावटों से अल्लाह से नाराज ना हो, अल्लाह की किताबों से नाराज हो, ये क्या हुक्म आ गया जी, ये फला चीज़ क्या आ गई, ये को जी मुसीबत आ गई, मेरे तो ये काम नहीं चलता, मेरा तो ये फार्म नहीं हो रहा, मेरा तो बे हो गया, मैं तो सख्त बीमार हो गया हूँ, ये रुकावटें हैं, इसको अबूर करना है हमने, अल्लाह ताला कहते हैं इनको अबूर कर दे जाओ, जब इनको अबूर कर लोगे तो तब तुम इम्तहान पास आओ, बोला नबलो गन्नो बिजैम जो इम्तहान, देखे ना भूख भी आएगी, नंग भी आएगी, परेशानी भी आएगी, खौफ भी आएगा, हर चीज से मैं जो तुम्हें पेश करूंगा, लेकिन मजा यह है कि मर्द ऐसे बनो कि इन सब को रुकावटों को तय करते हुए तुम मेरे तक पहुंच जाओ। तो हम बुरा कहना शुरू कर देते हैं, ये क्यों हो गया जी, फला क्यों हो गया जी, फला क्यों, ये तो क्यों मात होगा, बिकॉज इस दुनिया और दुनिया इम्तहान है, इम्तहान में तो मुसीबतें हैं, इन मुसीबतों को तय करना है आपने, किसी तरह भी तय करें। अब अल्लाह का कर्म यह है कि इन तमाम मुसीबतों को रुकावट ने दूर करने के फिर असबाब भी दे दिए अल्लाह ताला, ये अल्लाह का कर्म है, ने हल भी दे दिया, इम्तहान भी ले रहा है और साथ में क्लू भी दे दिया हमें पेपर का, जिसका कहते हैं कि भाई कुछ पेपर से पहले क्या मैं टर्म भूल गया, इम्तहान के अंदर होता था ना कि भाई थोड़ा इशारा भी दे दिया अल्लाह पाक ने, ऐसे कर लोगे तो पास हो जाओगे, ऐसे कर लोगे तो इसमें पास हो जाओगे, ये मुसीबत आएगी तो ये काम कर लेना पास हो जाओगे। सुभान अल्लाह। तो इंसान जब उन चीज़ों को अख्तियार करता है तो उन मुसीबतों को तय करना शुरू कर देता है, तो बजाय हम फजूल बातें शुरू करें या ये क्यों हो गया, फलां क्यों हो गया और उल्टी सी, बजाय उसके उस मुसीबत को उस रास्ते से तय करो जो रास्ता अल्लाह ने आपको बताया है। अल्लाह करे मैं बात समझा सकूँ आपको, ये प्रैक्टिकली अमली बातें कर रहा हूँ मैं आपके साथ, हमें ऐसे करना है, हमने ऐसे करना है, आज बड़ी जबरदस्त बात करूंगा आपसे, अमल करके देखना। तो समझिए यहाँ तक बात समझ आएगी कि दुनिया इम्तहान गया है और वो इम्तहान जब तक इम्तहान ना हो नहीं होता जिसमें रुकावट ना हो, जब रुकावट बनती है तो चीज़ इम्तहान बनती है, तो अल्लाह ने दुनिया को रुका इम्तहान गा का है, तो इसके लिए अल्लाह ने जितनी भी चीज़ें पैदा की हैं रुकावटें हैं, इन रुकावटों को क्या करना है, अल्लाह कहता है इनको तय करो, और तय करो जब तुम सिर्फ तय कर लोगे रुकावटों को तो फिर तुम मेरे पास पहुंच जाओगे, तो तुम कामयाब हो जाओगे। और उसमें क्लू ये दे दिया कि हर रुकावट को अल्लाह ताला ने ये भी कह दिया कि मैं उसके तुम्हें असबाब भी बता देता हूँ, चलो इसको तुम ऐसे हल कर लोगे, तुम इससे ऐसी मदद लो, इसके लिए ऐसी मदद लो, तो तुम्हें मदद मिलती चली जाएगी और इंशाल्लाह तुम उससे निकल जाओगे। तो गलती किसकी है, हमारी कितनी गलती है कि हम उस सबब को नहीं पकड़ते, तलाश नहीं करते कि इस चीज़ के लिए अल्लाह ताला ने क्या हल बताया है, फला काम हो जाए तो उसके लिए क्या हल बताया है, फला मुश्किल आ जाए तो उसके लिए क्या हल बताया है, ताकि वो हल तलाश करें तो वो रुकावट खत्म हो, वो रुकावट खत्म हो तो हम अल्लाह की रजा को पालें। समझ आ गई बात। मेरे भाई हो इसी रुकावट में से एक रुकावट जो है वो बड़ी अजीब रुकावट है, और 99% यानी उसमें मुत्तकी भी हैं, सब हैं, बुजुर्ग भी हैं, सारे वो इस रुकावट में फंसते हैं जिसकी मैं आज आपसे बात कर रहा हूँ। हम तो आए खैर छोटे आदमी हैं माशाल्लाह, तो बुजुर्ग तक जो है वो ही फंस जाते हैं इसमें, वो ऐसी रुकावट है कि वो हर चीज़ से रोक देती है इंसान को, और उसको पता ही नहीं चलता कि मुझे ये क्या चीज़ रोक रही है, जानता है उस चीज़ को, बोलता भी है, नाम भी उसका लेता है, लेकिन बस उसको एहसास ही नहीं हो रहा, बड़े मजे से कह देता है, हंस के कह देता है, उस रुकावट पर हंस के कहता है, बड़ा इजी टेक करता है, लेकिन वो इतनी खतरनाक है, अगर आप थोड़ा सा गौर करें तो हर चीज को
रोकने वाली चीज वो बनती है। और पता होता है हमें बड़ी मुफीद चीज है हमारे लिए, किसको पता नहीं कि तलावत कुरान कितनी बड़ी चीज है, पता है ना सब, किसको पता नहीं अल्लाह के जिक्र की मजलिस कितनी बड़ी चीज है। ना यश का जलीस हूं, हदीस पे है, बार बार सुनाता हूं आपके, कि इतनी बड़ी चीज है कि उसमें सिर्फ कितना गंदा मंदा आदमी उस जिक्र की नीयत से बैठ गया तो अल्लाह ताला कहते हैं वो महरूम हो ही नहीं सकता, जन्नत में गया। यह सबके लिए खुशखबरी है आज, मस्जिद सल्लाह ने कायम कर दी, इसमें मेरे जैसा गुनाहगार भी बैठ गया, नेक भी बैठ गए, सब बैठ गए, तो ठप्पा लग जाएगा। अल्लाह का वादा पक्का होता है, रोजे क्यामत में उठेंगे तो अल्लाह ताला कहेगा फला मस्जिद में मैंने तेरी मगफरत कर दी थी, मैं तुझे पहुंचाया इसलिए था कि तेरी मगफरत हो जाए। ये तो पूरी हदीस कह रही है, इस पर इनकार कौन कर सकता है कि उसमें आना जो है हमारा, ये तो अल्लाह का फजल और करम है, उसने हमें भेज दिया, हमें पता भी नहीं इस बात का कि हमारी बख्शिश होगी, हमें इतने नाम मिलेंगे, लेकिन जड़ते थड़ते उसने उस मस्जिद से इंसान, मैं कई वाक्य सुना सकता हूं आप, ऐसी बात अल्लाह ने दिखा भी देते हैं दुनिया के अंदर, दुनिया में दिखा भी सकता है। तो फिर क्या होता है, कितनी बड़ी चीज है, लेकिन वो ऐसी चीज है उससे भी रोक देती है, और पता भी होता है लोगों को उससे भी रोक देती है। तहज्जुद कितनी बड़ी चीज है, क्या मुश्किल है, तहज्जुद से भी रोक देती है, इशराक से भी रोक देती है। अच्छा और छोड़ें, नमाज पढ़ने आए हम, बस फर्ज पढ़ी, बाकी नमाज सुनते पढ़े फिर भागे, वो क्या चीज है, वो उससे भी रोक देती है। और कितने बड़े बड़े लोग रुक जाते हैं इससे, उनको ये पता नहीं कि जो नवाफिल है इसके सवाब अल्लाह ने कितने रखे हैं, और कल हमें इस चीज की जरूरत पड़ेगी, ये मुश्किल नहीं है, लेकिन वो ऐसी खतरनाक चीज है वो उससे भी रोक देती है। समझ रहे आप, रुकावट बता रहा हूं, इतनी बड़ी रुकावट है कि इस रुकावट को हमने दूर करने तो अल्लाह की रजा मिल जाती है, इसको अल्लाह की रजा रोकने की, हमें अपनी मंजिल हासिल करनी है, हमें पता नहीं कब मौत आ जाए, हमें आज नियत बनानी है कि अल्लाह हमने तुझे राजी करना है। तो राजी करने का यह है कि जो चीज अल्लाह ने फरमाई है उसको करे आदमी, उसको करे, तो हम करते क्यों नहीं है, उसकी वही रुकावट ये वजह है जो रुकावट में आज आपको बताता हूं। मैं नाम लूंगा, आप सब कहेंगे ओ ये तो हमें पता था, नाम ले दो उसका, क्या चीज है, कौन सी रुकावट है वो बताओ। बहुत आसान से वो बात करते हैं, वो रुकावट का नाम है सुस्ती। बोले सुभान अल्लाह, छोटा बच्चा भी हंसा है, सुभान अल्लाह, ये भी समझिए मेरी बातें सुनते, बच्चे खुशी को सुनते हैं बातें, ये भी वही बहाने मारते हो छोटा, बस ये बता रहा हूं, इतने से लेके हूं मैं, हर बड़े से बड़ा मुत्तकी बुजुर्ग भी सुस्ती से मार खा जाता है, कितनी जबरदस्त रुकावट है, मुझे पता है। देखें अल्लाह वाले कहां तह तक पहुंचते हैं इसकी इस्लाम के लिए, कुछ सोच भी नहीं सकता, बस एक नाम होता है शैतान, शैतान मुझे शैतान करता है ये काम, अल्लाह के बंदे शैतान के क्यों बदनाम करते हो, बहुत सी बीमारियां हैं उनको, बीमारियों को पकड़ो। सुने यार नमाज क्यों नहीं पढ़ी, मैं यार सुस्ती हो गई है, कहते ही नहीं कहते, यार तलावत नहीं की, यार दिल तो कर रहा सुस्ती हो गई यार, भाई नमाज तो तुम पूरी पढ़ लेते, यार पढ़ने को दिल तो कर रहा था, बस चलो फर्ज पढ़ ले, सुस्ती सी आ रही है, पता नहीं दिल नहीं कर रहा है, ये टॉपिक ये नहीं है, कितनी बड़ी बीमारी है सुस्ती, यार अल्लाह का जिक्र हो रहा है यार कोशिश तो है सुस्ती होगी, अब कितनी बड़ी चीज को रोक रहा है, तहज्जुद को कौन रोक रहा है, अल्लाह कहता है तहज्जुद जैसी नमाज ही नहीं है, उस वक्त मैं बिल्कुल तुम्हारी बातों को सुनता हूं, मांगो जो मांगना है, सारी नफिल नमाजों में सरदार है तहज्जुद की, लेकिन 99% क्यों नहीं पढ़ते, सुस्ती हो जाती है सुबह, मियां कब्र हर वक्त पुकारती है, हर लम्हे नजदीक जा रहे हैं, वहां सुस्ती क्या काम आएगी, या अपन जी बताएं ये चीजें काम आएंगी, मेरे सुभान अल्लाह, समझ गए मेरी गल में लग दिया, पहुंच गए मेरी बात तक, अगर ये सुस्ती दूर हो जाए इंसान की तो उसका 99% काम बन जाए, बैठा है घर में पता है जिक्र होना है शाम, सुस्ती बीवी कह रही है जानते नहीं जी तुझे जिक्र, आज सुस्ती जी चढ़ी है पता नहीं क्या, इंशाल्लाह सुबह से जाएंगे, वो सुस्ती ऐसी इंसान को जो है ना चीज बड़े से बड़े इंसान को पैदल कर देती है, और कितना बड़ा नुकसान करती है बताए। तहज्जुद का वक्त सुस्ती, एक तहज्जुद की नमाज, सुभान अल्लाह। जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह के मैं कॉल पेश करता हूँ, कैसी कैसी इबादतें होंगी, कैसे कैसे मुजाहिदात होंगे, कैसे कैसे अल्लाह का जिक्र होंगे, कैसे कैसे तिलावत कुरान होंगी, मुझे बताएं उस शख्स की कैसी कैसी मार्फत के अमाल होंगे उसके, कैसी हमारी क्या नमाजें उसकी उनकी होंगी। तो मुझसे पूछा गया इंतकाल, बहुत बता रहा हूँ इंतकाल के बाद पता चलते हैं, मुझसे पूछा गया हजरत ये तो बताएं आपका मामला क्या हुआ अल्लाह के साथ। कहते शुक्र अल्लाह ताला, अल्लाह ने बस मुझे बख्श दिया, सारी मेरी हर चीज़ों को एक तरफ रख दिया, अल्लाह को जो चीज़ मेरी पसंद आई वो क्या आई, वो जो दो रकात में रात को उठ के पढ़ता था अल्लाह ने वो कबूल कर ली। ये दिखाना है अल्लाह ताला ने ताकि हम पता समझे वो क्या चीज़ है हमारे साथ, क्या है सुस्ती। अल्लाह के बंदे ये सुस्ती क्या क्या भला है, इसने पूरी दुनिया को बर्बाद किया हुआ है। जब कब्र हम में जाएंगे तो कितने बड़े, तुमने ये क्यों नहीं किया, तुमने वो सुस्ती हो गई थी हमारे पास, तो ये सुस्ती हो गई थी, अब करेंगे सुस्ती आप फिर भी करेंगे। मैंने अर्ज किया था ना आपके, अल्लाह बड़े करीम हर चीज का इलाज रखा है, तो आज आप किसका इलाज बताऊं, मैंने जुबान कितनी बड़ी बीमारी है, अगर यह इसका इलाज हमें मिल जाए मुझे बताएं, ये तो ऐसा है कि जिस तक कोई इतनी सख्त कैंसर जैसी बीमारी है उसके इलाज में 100% क्योर, सारी दुनिया में इश्तेहार लग जाएंगे जना ओ जी कैंसर का इलाज मिल गया, हाय हाय अल्लाह वालों की कोई ये बात ही सुनता। जब वो ऐलान करते हैं कि आओ तुम्हें आखरत का एक बीमारी का इलाज बताता हूँ, तुम्हारी अल्लाह की रजा नसीब हो जाएगी, कोई तारीफ नहीं, क्योंकि हमें शौक ही नहीं है इस चीज का, शौक ही नहीं है। दिन सबका करता है कि मैं ये नमाज भी पढ़ लूँ, मैं फलां भी कर लूँ, मैं तहज्जुद भी पढ़ लूँ। ईमान जो है ये नहीं कि हम नहीं कर चाहते, चाहते हम सब हैं, दिल भी करते हैं हमारा, आने को दिल करता है, लेकिन क्योंकि उसने एक ऐसा इंजेक्शन लगा दिया है सुस्ती का कि हम आगे बढ़ते नहीं, आए इसकी इलाज हमसे, इस बीमारी का इलाज क्या है, अजीब इलाज है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी दुआओं के जरिए से इलाज दिए हैं, याद ये दुआएं ऐसी चीज नहीं है, ये दुआओं की जो किताबें हैं ना, जो कि दुआएं अल्लाह के नबी ने मांगी हैं, वो तो बहुत बड़े खजाने हैं, और उम्मत को इसी तालीम दी है इन दुआओं के जरिए, इतनी बड़ी तालीम दी है और इतने बड़े बड़े इलाज दिए हैं कि जिसका कोई हिसाब ही कोई नहीं, दुआओं के जरिए। नहीं फरमाते हैं कि अल्लाह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो दुआएं मांगी हैं उसमें कसरत से नहीं, बाकसरत से एक दुआ मांगी है, और उस दुआ के अंदर सबसे बड़ा जो दुआ मांगी है वो उसके लिए, इस चीज के लिए मांगी जो सबसे बड़ा इंसान के लिए खतरनाक चीज है, वो क्या है सुस्ती। क्या चीज है जिससे सुस्ती खत्म होती है, कौन सी दुआ मांगी है अल्लाह के नबी, क्या इशारा फरमाया अल्लाह तक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाकसर तौर पर औज़ बिल्लाह मिन कस्ली, कस्ल कहते हैं सुस्ती को, ये जो दुआ है कि अल्लाह ताला मुझे सुस्ती से बचा, कसर से बचा। हदीस में आता है कि ये दुआ नबी पाक ने कसर से नहीं बाकसरत मांगी है, बहुत मांगी ये दुआ, किस लिए, उम्मत की तालीम के लिए कि तुम्हें जो बर्बाद करेगी ये कसर करेगी, सुस्ती करेगी, उसका इलाज बताया है, इसका इलाज समझे नहीं समझे, सुभान अल्लाह। जो अल्लाह के नबी इलाज बताए वो कितना बड़ा इलाज होगा। तो फरमाया जिस वक्त सुस्ती गालिब होने लगे और तुम अपने अमाल को सुस्ती से जाहिर करने लगो, ये इतनी बड़ी बीमारी है कि इसका इलाज ही नहीं है दुनिया के अंदर, इसका इलाज ही कोई नहीं। जब भी अल्लाह ने फरमाया, अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि जब किसी चीज का इलाज ना हो जो इतनी खतरनाक हो, तो उसका सिर्फ वाहिद एक इलाज रह जाता है, और वो इलाज क्या है कि अल्लाह की पनाह तलाश करो। जब सब ताकतें खत्म हो जाए, सब चीज खत्म हो जाए, इतनी ताकतें रह के आप कुछ कर सकें, बिल्कुल लाचार हो जाए, परेशान हो जाए, तो उस वक्त एक दरवाजा खुला हुआ है, और वो दरवाजा क्या है कि अल्लाह ताला तू बचा दे मुझे, یہ بہت بڑا دروازہ ہے اللہ کے سامنے فریاد کرنا, اعوذ باللہ, اللہ بچا دے مجھے, تو بچا لے مجھے. کیوں سنیں, یہ جو فریاد آپ جس سے کر رہے ہیں وہ سننے والا ہے اور وہ ترک کبھی نہیں کرتا فریاد کو. اس کی مثال چھوٹی سی میں آپ کو دیتا ہوں. آپ بڑے صاحب اقتدار ہیں, مطلب طاقتور ہیں, طاقتور ہیں اپنے حساب سے. ایک کمزور سا آدمی آتا ہے, کوئی غریب آدمی آتا ہے آپ کے پاس, کہتا ہے یار میری مدد کر دیں پلیز. اور آپ جانتے ہیں جینے آدمی ہے, سچا آدمی ہے, میری کچھ مدد کریں, مجھے بچائیں اس مصیبت سے. اور آپ میں طاقت بھی ہے, اور آپ میں وہ طاقت ہے بچانے کی. ہر اچھا انسان جو ہوگا, ضمیر والا انسان جو ہوگا, اس کو بچانے کی کوشش کرے. ڈیفینیٹلی کہتے ہیں آؤ میں تمہیں دے, اس کی پریشانی دیکھتا ہے, اس کو روتا دیکھتا ہے, اس انسان میں طاقت ہے کہ میں اس کو بچا سکتا ہوں. تو کہتا ہے آؤ یا میں تمہاری مدد کرتا ہوں, آؤ تم یہاں میرے گھر ہی آ جاؤ, یہاں تھوڑے دن یہاں آرام کر لو. پناہ دیں گے آپ نہیں دیں گے؟ ہر یعنی کوئی پتھر سے پتھر دل بھی آدمی ہے تو کوئی ایسا انسان آ جائے جو بہت ہی بےچارا دکھی ہے, برا حال اس کو, وہ کہتا ہے آ جائیں. نہ ماننے والے دیتے ہیں, غیر مسلم دے دیتے ہیں سب سے زیادہ. یہ دل کی ایک ایسی اللہ نے کمزوری رکھی ہے اللہ تعالیٰ. تو میرے بھائیو, جس کے پاس سب طاقتیں موجود ہیں, طاقتیں وہی تقسیم کرتا ہے جو قادر ہے, مطلق ہے, سب کچھ ہے, اس سے جب کہیں گے اللہ تعالیٰ تو مجھے بچا, وہ آپ کو نہیں بچائے گا. وہ آپ کہہ جائے بھاگ جا, میں تجھے نہیں بچاتا. ایک انسان بچا سکتا ہے اس کسی مجبور کو دیکھ کے, لیکن جو اتنا مجبور ہے کہ میں پھنس گیا اللہ تعالیٰ, میری جان میں تہجد پڑھنا چاہتا ہوں, سستی سے بچ گیا, تو اللہ تعالیٰ مجھے بچا, مجھ میں وہ طاقت دے. اس کو کہتے ہیں آؤس, پناہ مانگ رہا ہوں اللہ تعالیٰ سے, اللہ تعالیٰ مجھے بچا. تو یہ اتنی بڑی اینڈ ہوتا ہے انسان کا جا کر, کہ جب سب رستے بند ہو جاتے ہیں. حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ پڑھا نا آپ, جب حضرت خان نے سارے دروازے بند کر دیے, سات کمروں کے دروازے بند کر دیے, ان کو بند کر کے کہا آؤ میرے ساتھ, تم بدفری کی طرف بلایا انہیں, تو موسیٰ علیہ السلام کے آپ کچھ بے بس, کچھ بھی نہیں تھا. تو کیا ہوا, انہوں نے رجوع اللہ کیا کہ اللہ تعالیٰ اب رستے سارے بند ہو گئے, کچھ بھی نہیں ہے, لیکن میں ہار نہیں مانتا. کیوں کہ تو میرا رب ہے, میں تجھ سے فریاد کرتا ہوں مجھے بچا. وہ بچا کے کہنے کے بعد پھر بھاگے, جس دروازے پہ جاتے تھے زلیخا پیچھے تھی اور دروازے کھلنے شروع ہو جاتے تھے. لاؤ شروع, یہ سب کس اس لیے بتایا گیا کہ تم اپنے آپ کے اندر شعور پیدا کرو, کہ اللہ کے سامنے بہانے نہ ماننا, یہ سستی ہوگی تھی نماز نہیں پڑھی, یہ سستی ہوگی تھی فلاں نہیں پڑھی. کہتا نہیں, یہ سب جتنے بھی اعمال, اگر تم میری رضا چاہتے ہو, کہ جو میری رضا تہجد میں ملے گی کہاں ملے گی, تمہیں بتائیں, جو میرے اللہ کے ذکر میں رضا ملے گی بتاؤ کہاں ملے گی. تو کل تم کیا جواب دو گے کہ میں ان وسائل کو اس لیے نہیں میں نے اختیار کیا کہ مجھے سستی ہوتی تھی. تو کہتے ہیں اگر تجھے سستی ہوتی تھی تو تو نے مجھ سے کیوں نہیں فریاد کی. بلے سبحان اللہ. ہم میں آپ سے سوال کرتا ہوں, بلکہ پورے مجمع جو آج پوری دنیا میں سن رہا ہوں عورتوں پر, مجھے آپ بتائیں کہ کتنے لوگ ہیں جب ایسی حالات ہوتی ہے, جو تہجد نہیں پڑھتے, جو اشراق نہیں پڑھتے, جو چاش نہیں پڑھتے, جو ذکر نہیں کرتے, جو تلاوت نہیں کرتے, جو نوافل کو ٹکے گا سمجھتے ہیں, ان کی کوئی قیمت ہی کچھ نہیں نوافل کی, تو وہ پوچھتے ہیں, میں ان سے پوچھتا ہوں کہ بتایا ٹھیک ہے, آپ کہتے ہیں سستی کمزوری, اور پتہ نہیں کیا کیا نام دیے. تو آپ سے اللہ سے جو پوچھے گا, میں آپ سے یہ پوچھتا ہوں کہ آپ نے کبھی, جو اللہ کے نبی نے جو علاج بتایا, کہ کبھی آپ نے اللہ سے پناہ مانگی فریاد کی؟ کوئی نہیں. بتائیں کتنا ہمیں اللہ پہ یقین ہی نہیں ہے کہ ہماری مدد کر سکتا ہے. ایک انسان کے پاس ایک کنڈی کھڑکا سکتے ہیں کہ میری مدد کر دیں پلیز, لیکن اللہ کی کنڈی نہیں کھڑکا سکتے کہ جو شاید رگ سے بھی زیادہ قریب ہے. جو انسان کی فریادوں کو سنتا ہے کہتا ہے شاید رگ سے, اور مانگنے کا انداز ہے کہ تو جب مانگے گا تو ایسا ہو نہیں سکتا میں تجھے نہ دوں. تو نے مانگا نہیں مجھ سے, تو نے مجھ سے مانگا نہیں. اگر تو فریاد کرتا ہے یا اللہ مجھے پناہ دے, میں صبح تہجد کی نماز پڑھنا چاہتا ہوں کیونکہ اس میں تیری رضا ہے, میری مسجد تیری رضا ہے, اور تیری رضا میں حاصل نہیں کر سکوں گا, تو تیری رضا حاصل نہیں کروں گا تو میں تو پھر بے منزل چلا جاؤں گا اس دنیا سے, تو جہنم میرا ٹھکانہ ہوگا. تو نے تو مجھے بھیجا اپنی رضا کے لیے تھا, اور تیری رضا تو تہجد میں ملتی ہے, تیری رضا تو ذکر اللہ میں ملتی ہے, تیری رضا تو تلاوت میں ملتی ہے, تیری رضا تو عمرے ملتی ہے, حج ملتی ہے, یہ اعمال مجھ سے کیوں نہیں سرزد ہوتے, اس کی وجہ کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ ان پردوں کو ہٹا سستی کے, اور مجھے تہجد گزار بنا دے. یہ سب سستی ہے کہ میں نبیوں کی سنت پہ عمل نہیں کرتا. کھڑو کے پانی پی لے گا بیٹھ بھیا پی لیں, اس کاہلی پیدا کرتے ہیں انسان کو. یہ نہیں کہ آپ اس پہ یقین نہیں کرتے یا میں یقین نہیں کرتا کہ داڑھی رکھنے کی کتنی بڑی قیمت ہے, لیکن ہاتھی نہیں جاتا کہ اس کو بڑھا لے اپنی داڑھی کو. آدمی روزے قیامت میں شرمندی اختیار کر لیں گے, اللہ کے نبی کی ناراضگی اختیار کر لیں گے, اور جو اس پہ عذاب ہیں وہ برداشت. اس کے تو عذاب ہی نہیں ہے جو نبی سنت کو قطع کرے جان بوجھ کر, اور جو اتنی بڑی سنت ہو, جو واضح سنت ہو جس کا اللہ نے رسول نے حکم دیا ہو. اس سے میں تھوڑی تھوڑی مثالیں دے رہا ہوں, وہاں کیا بہانہ کریں گے. یہی بیماری ہے, اگر آپ کی داڑھی نہیں بڑی, ہمت نہیں جاری, مجھے آپ صرف اتنا بتا دیں کہ آپ نے کبھی اٹھ کے اللہ کے نبی سے, اللہ کے رسول, اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی کہ اللہ تعالیٰ مجھے ہمت دیں اپنی داڑھی کو بڑھا لوں؟ کبھی نہیں مانگی. کسی گناہ کو ہٹنے کے لیے اللہ سے آپ نے پناہ مانگی کہ مجھے میوزک سننے کی عادت ہے, اللہ تعالیٰ مجھے بچائے اس میوزک سے, یا مجھے لڑکیوں کو دیکھنے کی عادت ہے بچاؤ مجھے اس سے, یا مجھے گالی دینے کی عادت ہے بچائے اس سے, یا اللہ میرے دل میں شہوات آتی ہے مجھے بچائے اس سے. لڑکیوں کی شہوات جوانی میں آتی ہے انسان کی, اس میں کوئی شک نہیں, لیکن آپ یہ تو نہیں نا اللہ سے کہیں گے اللہ میں جوان تھا تو میں کیا کرتا. کہتے بالکل جوان تھا سب کچھ تھا, لیکن تم مجھ سے پناہ مانگتا, تجھے حلال لڑکی میں عطا فرما دیتا. ہم مانگی نہیں کبھی, مانگتے ہی نہیں, برائی کی طرف چلے جائیں گے. یہ مجبوری ہے کیا کریں, شادی نہیں ہوتی چلو یہی دیکھ لیتے ہیں, شادی ہو تو چلو ہاسی گزارا کر لیتے ہیں, چلو جی فلاں کر لیتے ہیں. تو اللہ سے تو مانگ کہ اللہ تیرا ٹیسٹ ہے, میں سمجھتا ہوں یہ امتحان ہے, اور یہ ٹیسٹ تم نے مجھے دے دیا ہے, اس ٹیسٹ سے میں نکلنا ہے, کیونکہ رکاوٹیں آئیں گی تو میں امتحان پاس کروں گا. یہ رکاوٹیں میری ترقی کا باعث ہیں, اس سے میں عروج لوں گا. یہ تو رکاوٹ نہیں ہوتے دنیا ہی نہیں ہے, پھر تو امتحان ہی ختم ہو جاتا ہے. رکاوٹ آئیں گی تو یہ شہوات بھی دے دی مجھے اور لڑکی بھی نہیں دی, کیونکہ اللہ آزمانا چاہتا ہے کہ اس کے لیے مجھ سے فریاد کرتا یا نہیں کرتا. غلط رستہ اختیار نہیں کرتا, بس سیدھا اپنے رب کی طرف آ کے مجھ سے مانگتا ہے. میری بات سمجھ گئے, سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں. تو آئندہ یہ ہے کہ ساری چیزیں ہم نے کرنی ہیں, اور جو چیزیں کرنے میں ہماری ہمت نہیں پیدا ہو رہی اس کی گڑ گڑا کے اللہ سے دعا کرنی ہے کہ میں تہجد پڑھنا چاہتا ہوں, اشراق پڑھنا چاہتا ہوں, میں ذکر بھی کرنا چاہتا ہوں, یہ کیوں نہیں مجھ سے ہو رہا ہے, اس کی وجہ کیا ہے, یہ کیوں مجھ سے کام نہیں, جو تیری رضا کے کام نہیں ہو تو مجھ سے ہوتے ہیں, بڑے آرام سے ہوتے ہیں, اس میں مجھے دعا کی بھی ضرورت نہیں, بس ٹیلی فون اٹھانے کی ضرورت ہوتی ہے. میں سب کچھ کرتا ہوں, ہر کام میں کرنے کے لیے تیار ہوں, تیری رضا کے نہیں ہے. لیکن جب تیری رضا کے معاملہ آتا ہے تو مجھ میں رکاوٹ ہو جاتی ہیں, ہر چیز مجھے چھوٹی نظر آنی شروع ہوتی ہے. اس کی کیا ضرورت ہے جی, داڑھی کی کیا ضرورت ہے جی, تہجد کی کیا ضرورت ہے جی, نفل کی کیا ضرورت ہے, نماز پڑھ لینا فلاں صدقے کی کیا ضرورت ہے جی, اللہ اکبر کیا ضرورت ہے. اگر ضرورت نہ ہوتی تو اللہ بناتے کیوں. بہت سخت ضرورت ہے, یاد رکھیں یہ چھوٹی چیز نہیں ہے نوافل, یہ سنتیں, تہجد, یہ شراب, یہ چاشت, یہ تسبیحات, یہ ذکر اللہ, یہ انعام اللہ اتنے اتنے بڑے دیے کتابوں کے اندر, مجھے آپ بتائیں چھوڑیں گے آپ؟ بولے نہیں چھوڑیں گے. ہم اللہ سے مانگیں گے, اللہ تعالیٰ مجھے تہجد گزار بنا, مجھے سچا عاشق بنا, جو نبی ہمیں حکم آیا ہے میں ویسے سنو تو پہ چلنے والا بنا, پکا نمازی بنا, نماز پڑھ لی جی پڑھ لیتی, کدھر پڑھی گھر سے پڑھ لیجیے, گھر میں پڑھ لی, گھر تو نماز کی جگہ ہی نہیں ہے, گھر میں تو نماز پڑھتے ہی نہیں, گھر میں اللہ نے کہا ہی نہیں گھر میں پڑھتے, مسجد سجدے سے نکلی ہے کہ سجدہ کرنا ہے تو پھر اس جگہ پہ جا جہاں سجدہ لکھا جاتا ہے. ہاں نفل پڑھ لیں آپ آ کے گھر, آ گھر پڑھ تو کہاں پڑھنی ہے نماز, کہاں پڑھنی ہے, کیوں نہیں پڑھتے, سستی. آپ کہیں سستی کیا ہوتی ہے, میں اللہ سے فریاد کر, اللہ تعالیٰ مجھے پکا نمازی بنا. یاد رکھیں دو چیزیں, یاد رکھیں پہلا اللہ سمجھ گیا آپ کیا ہے, اللہ سے پناہ مانگنی ہے, اللہ سے فریاد کرنی اس چیز کی جو اچھی چیزیں اللہ ہمیں کرنی ہے, ہمیں کرنے دیں. ایک چیز تو یہ ہو, اس کی بات دوسری چیز, دوسرا علاج اس کا ہمت. کیا ہے ہمت؟ بڑی زبردست, یہ وہ انسان ہے, یہ پہاڑوں کو اٹھا کر پھینک سکتا ہے, اتنی ہمت دی انسان کو اللہ تعالیٰ نے, دریاؤں کے رخ موڑ سکتا ہے, کسی میں دنیا کے اندر اتنی ہے جتنی انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہمت دی ہے, یہ تو پہاڑوں کو توڑ سکتا ہے, समंदरों को खत्म कर सकता है, रुख बदल सकता है दुनिया के। इतनी हिम्मत अल्लाह पाक ने दी है इंसान के अंदर, किसी की ताकत कुछ नहीं, किसी की ताकत, किसी की इतनी ताकत नहीं इंसान ने दी, इतनी जुरत उस पर, जिस वक्त इतनी हिम्मत है कि जिस वक्त बंदा इरादा कर ले कि मैंने ये करनी है सुभान अल्लाह, तो बस पक्का इरादा कर ले, वो कर जाता है इंसान, कर्ज गुजरता है। अगर आज मैं इरादा कर लूं कि मैंने अल्लाह को राजी करना है सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सवाल ही पैदा, एक तो मेरा पक्का इरादा, हिम्मत, मैंने ये करनी है, मैं कैसे नहीं कर सकता, आई विल डू चैलेंज, हो नहीं सकता, क्या चीज है जो मुझे रोक सकती है इससे, मैं अपने रब को ना पाऊं, कौन है जो मेरे रास्ते में आ सकता है, बताया मुझे, रोक के दिखाए सुभान अल्लाह। यह मर्दों का रोक दिखाए, मुझे कौन रोक सकता है, ये हिम्मत, अल्लाह से पनाह मांग रहे हैं, मदद मांग रहे हैं, सालत में अपनी हिम्मत, हालांकि हिम्मत जरूर रखना, अलग दूसरे तो अपनी हिम्मत को ला रहा है, और तीसरा फिर कहता है फिर मजे मैं तुझे कराऊंगा, देख किस तरह कामयाब हुई। जितनी भी कामयाबी हुई है इंसानों को, बड़े बड़े इंसानों को याद रखें, जितने बड़े बड़े इंसानों को कामयाबी हुई दुनिया के अंदर, इन दो चीजों के साथ हुई है, दो चीजों के साथ, इयाक नअबुदु इयाक नस्तईन, ये पना तुझसे मांगते हैं, इबादत तेरी करते हैं, और कोशिश भी करेंगे पूरी हर चीज को हासिल करने की, तो कभी नहीं बैठ सकता, दुनिया के रुख फेर देता है, उसका सारी दुनिया एक तरफ हो, वो एक आदमी खड़ा हो जाएगा, वो जीत जाता है। सही कह रहा हूं, कामत क्यामत तक आपको ऐसे लोगों की मिसालें मिलेंगी। हमें ये इसलिए नहीं पता करने वाले इंसान नहीं है, हिम्मत करें, मैं नमाज क्यों नहीं पढ़ सकता, सारे जहां मैं क्यों नहीं पढ़ू, मैं क्यों अल्लाह को राजी ना करूं, मैं तहज्जुद क्यों ना पढ़ू, मैं क्यों ना पहनू, मैं क्यों दाढ़ी ना रखू, जिस चीज का आप अल्लाह की रजा के इरादा कर रहे हैं कि मैंने अमल अल्लाह की रजा के लिए करना है, शिर्क हो जाए, फिर अल्लाह के इनामात और अल्लाह की मदद देखें, फरिश्ते आएंगे आपके पास, इस मस्जिद में, इस मुस्तले में खड़ा करता हूं, तो वल्लाह कसम खा कहता हूं कि आप तहज्जुद की नियत करें और हिम्मत करें, कभी एक आध दफा आपकी आंख नहीं खुली, फरिश्ते आके आपको उठाएंगे हाथ से, उठाए इस तरह पांव हिला के, अल्लाह की कसम आवाज आपके कानों में आएगी कि उठते क्यों नहीं है, जमात का टाइम वगैरह, उठ तो नहीं रहे, दोस्ती तो करके देखो, दो चीजें हो गई, मेरी बात समझ गए आप नहीं समझे, कोई भी नेक अमल जिससे अल्लाह की रजा मिल रही है उसको जाया नहीं करें, कोई भी नेक अमल जिससे और रजा मिल रही है उसको जाया ना करें, जाया किस तरह होगा कि ना आप अल्लाह से पनाह मांग रहे हैं ना उस पर आप हिम्मत कर रहे हैं, दो काम आप करें ये इंशाअल्लाह उस अमल को जो अल्लाह की रजा पहुंचाता है वो आप आराम से करना शुरू करने वाले, बात समझ गई मेरी, अल्लाह पाक हम सब कुछ की तौफीक। तीसरी चीज अक्सर ये आप सिख की मजलिस है ना, हाय हाय अल्लाह के नबी क्या इशारत फरमाते, मफहूम पेश करो, कहते बंदो अल्लाह ने और आसान कर दी अपनी पनाह को, हाय हाय अल्लाह पाक ने अपनी पनाह को और मजबूत कर दी है, वो और मजबूत हो जाएगी जैसे अगर उसके मुंह से भी कहोगे और वो अमल भी अगर तुम करोगे, वो खालिस अल्लाह ने अपनी पनाह के लिए रखा है, वो बर्बाद कर देगा सुस्ती को और आपको पास कर दे, पूरा करवा देगा आखिरत में, वो क्या है सुभान अल्लाह, अल्लाह से ताउस मांगो, पनाह मांगो, और प्रैक्टिकली क्या करना है, अल्लाह का जिक्र करो, जिक्र है ही पनाह का, बोले सुभान अल्लाह, जिक्र तो है ही किला है पनाह का, कि तुम महफूज हो जाओगे इसके अंदर, पनाह में आ जाओगे अल्लाह ताला, बोले सुभान अल्लाह, तीन चीजें कि जबान से कहो अल्लाह मुझे पनाह दे, हिम्मत करके खड़े हो जाओ, और तीसरा उन दोनों ताकतों में मजमा करना चाहते हो तो अल्लाह का जिक्र शुरू कर दो, आप क्या बनेंगे, आप होश बन जाएंगे, कुतुब बन जाएंगे, अल्लाह के दोस्त बन जाएंगे। और सबसे बड़ी चीज क्या, जिस मकसद के लिए मुझे और आपको भेजा गया है, रज़ा इलाही रदियल्लाह अन सुभान अल्लाह, इंशाअल्लाह पीछे मोहर लगी कि अल्लाह तुमसे राजी हो गया। या हित नफ्स मुतमइन्ना इला रजी अब अभी राजी तुम मर्द या कि मैं तुझसे राजी, मैं तुझसे राजी, तू मुझसे राजी, आखिरी फिक्रा ये होगा तुम्हारा जो दुनिया से जाओगे। तो तीन मतलब करेंगे भाइयों, बात तो आसान थी, समझ आ गए ना। सुस्ती गायब, सुस्ती के लाभ पूरा, ये सबसे बड़ी बीमारी थी, मैंने आज आपको बताई है। अल्लाह ताला हम सबको नेक तौफीक नसीब।
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيدنا المرسلين شفيع المسلمين ترحم يا سيدنا الحبيب الامين اللهم ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار اللهم نصرك من خير ما خلق من شر ربنا تقبل منا انك انت الغني الحميد انك انت الصمد اللهم انا على ذكرك وشكرك واستغفرك اللهم صدق علينا وحمدنا علينا ومحشنا جمع قيامة المعنى ربنا حبنا علينا وعجينا وزوريا وفتوين وزيانا للمتقين اللهم ربي رحمهم وحكما وجعل السعيد يا الله ماري مجلس قبول فرما يا الله ماري قناح قمار فرما يا الله ماري مباب كي بخشش فرما يا الله ماري بمان كو شفا نصيف فرما يا الله ماري بمان كو شفا نصيف فرما وصل الله تعالى محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا رحمن.